नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में वे जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच रहे हैं। श्री मोदी जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर वहां गए हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अब्दुल्ला और जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी अम्मान में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इथियोपिया जाएंगे। वे इथियोपिया में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी बुधवार को ओमान पहुंचेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी सांसदों के बीच बहस के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। कल नई दिल्ली में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के सांसदों ने मांग की कि कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए माफी मांगे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में यह मुद्दा उठाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष दोनों लोकसभा राज्यसभा में देशवासियों से माफी मांगना चाहिए।
राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कार्यवाही शुरू होते ही सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी माफी मांगे। श्री नड्डा ने कहा कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कांग्रेस की सोच और मानसिकता को दर्शाती है। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि विपक्ष जनता का विश्वास जीतने में विफल रहा है और इसलिए वे ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि रैली के दौरान मंच से किसी ने भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के डॉक्टर एम थंबिदुरई ने कहा कि चुनाव प्रचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के वाईवी सुब्बा रेड्डी ने चुनाव के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक और अनिवार्य करने तथा सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने की मांग की। लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे आगे की जांच के लिए संसद के नियुक्त संयुक्त समिति जेपीसी को भेज दिया गया है। दोपहर 2 बजे दूसरे स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। हालांकि विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कई सांसदों ने विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श पर जोर दिया था। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत करेगी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नायडू ने बताया कि घरेलू मार्गों के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के किराए की भी निगरानी की जा रही है। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शहीद बुद्धिजीवी दिवस पर कई प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किए। इसमें 14 दिसंबर 1971 को के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान की सेना के सहयोगियों की निंदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार स्क्वाश विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचने पर भारतीय स्क्वाश टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्क्वाश खिलाड़ियों ने अपने समर्पण और अनुशासन से देश को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।